आज है 29 मई दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं सुशीला सिंह। आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच हुआ समझौता।
मुझे खुशी है इस बात की कि जिस बैकवर्ड अति विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए हम पिछले 8-9 साल से संघर्ष कर रहे थे, वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है, पूर्ण विश्वास सा हो चला है कि अब उन्हें न्याय मिल जाएगा।
कितना साकार हो पाया है नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत का सपना।
ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड समाचार पत्र पढ़ना, एडमिट कार्ड निकालना एवं बोर्ड क्लास के रिजल्ट देखना, फेसबुक पर हम आपस में दोस्तों से बात कर सकते हैं।
क्यों सांसद नहीं खर्च पाए हैं चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए मिली निधि, सुनेंगे विशेष रिपोर्ट, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। राजस्थान सरकार गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए तैयार हो गई है। 8 दिन के गतिरोध के बाद गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच सहमति बन गई है। गुरुवार को राज्य सरकार और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में गुर्जर नेताओं के बीच 3 घंटे से ज्यादा लंबी चली बातचीत में इस समझौते पर दस्तखत कर दिए गए। इसके लिए सरकार एक विशेष विधेयक लाएगी। इराक की राजधानी बगदाद में 2 बम धमाकों में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं कई लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं। कार में हुए यह बम धमाके सबसे पहले शहर के जाने माने होटल बेबीलोन में हुए और उसके कुछ मिनट बाद शेरटन होटल में दूसरा धमाका हुआ। वहीं पुलिस का दावा है कि उन्होंने बेबीलोन होटल के पास मिले एक अन्य बम को निष्क्रिय कर दिया था। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। यूरोपीय फुटबॉल संस्था यूएफए के प्रमुख माइकल प्लैटिनी ने इस मुद्दे पर बुलाई गई आपातकालीन बैठक के बाद ब्लैटर से इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि ब्लैटर ने कहा कि वो हर वक्त एसोसिएशन के अधिकारियों पर निगरानी नहीं रख सकते थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसने घटनाओं पर अपनी नज़र बना रखी है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजेरिक ने कहा, हमने इस मामले से जुड़ी सभी घटनाओं पर अपनी नज़र बना रखी है। संयुक्त राष्ट्र ने फीफा के साथ कई बार साझेदारी की है। हमारी कई अन्य इकाइयां भी फीफा के फुटबॉल विश्व कप और अन्य आयोजनों के साथ जुड़ी हैं। हम चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र शांति और सहनशीलता का जो संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहता है वो इतने बड़े खेल आयोजन के जरिए लोगों तक पहुंचे। हालांकि इस मामले से जुड़ी जांच में अभी तक हमसे किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजेरिक के शब्द। बुधवार को अमेरिका में फीफा के 14 अधिकारियों पर गुटबाजी, धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी करने के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार अधिकारियों पर $10 करोड़ यानी कि करीब 6 अरब रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सीरिया में ऐतिहासिक शहर पलमायरा में एक पुराने थिएटर में 20 लोगों की हत्या कर दी है। सीरिया के मानवाधिकार संस्था के अनुसार चरमपंथियों ने हत्या करने से पहले स्थानीय लोगों को वहां बुलाया और इस कत्लेआम को देखने के लिए मजबूर किया। शहर पर आईएस के कब्जे के बाद से पिछले एक सप्ताह में 240 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से अधिकतर सैनिक हैं। अमेरिका में कानून और न्याय की देखरेख करने वाले विभाग ने 15 चीनी नागरिकों पर यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में धांधली करने का आरोप लगाया है। अभियोजकों के अनुसार आरोपियों ने वैध छात्रों की जगह परीक्षाएं देने के लिए जाली पासपोर्ट का भी इस्तेमाल किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2011 से 2015 तक पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। सभी आरोपी 19 से 26 साल के बीच हैं और उन्होंने अमरीकी विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा स्कॉलेटिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और टोफिल और जीआरआई जैसे परीक्षाओं में धोखाधड़ी की थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर आंदोलन की। राजस्थान में सरकार गुर्जरों के लिए नए सिरे से आरक्षण देने के लिए तैयार हो गई है। राज्य सरकार और गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच हुए समझौते के बाद गुर्जर नेताओं ने सड़क और रेल मार्गों से आंदोलनकारियों को हटाना शुरू कर दिया है। इधर सरकार ने आर्थिक रूप से मजबूत पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण देने का भी भरोसा दिलाया है। एक रिपोर्ट के साथ जयपुर से नारायण बारेट।
हफ्ते भर की तलखी और तनाव के बाद दोनों पक्ष जयपुर में मिले और घंटों तक समझौते की इबारत लिखने के लिए सोच विचार करते रहे। फिर गुरुवार की रात वो घड़ी आई जब सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच समझौते पर दस्तखत किए गए। इसके बाद चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने ऐलान किया, सरकार गुर्जरों को अलग से 5% आरक्षण देने को तैयार है।
अति पिछड़ा वर्ग के रूप में प्रत्यक्ष से एक विधेयक लाकर राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र के अंदर इसको पारित करवा के इसकी सारी कानूनी और वैधानिकता को अमलीजामा पहनाकर हम अति पिछड़ा वर्ग के रूप में 5% आरक्षण देने के लिए अपनी कटिबद्धता को दोहरा रहे हैं। इसको हम पूरा करेंगे। दोनों पक्षों के हमने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इसके लिए विधानसभा में नया विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इस बातचीत में किरोड़ सिंह बैंसला समेत 19 गुर्जर प्रतिनिधि शामिल थे। श्री बैंसला ने इसका स्वागत किया और कहा सरकार अपने वादे को पूरा करेगी।
मुझे खुशी है इस बात की कि जिस बैकवर्ड अति विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए हम पिछले 8-9 साल से संघर्ष कर रहे थे वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां हमें उम्मीद हुई है, पूर्ण विश्वास सा हो चला है कि अब उन्हें न्याय मिल जाएगा। हमारे आंदोलन से समस्त नागरिकों को जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ।
बीजेपी सरकार ने इससे पहले वर्ष 2008 में गुर्जरों के लिए ऐसे ही 5% आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके साथ ही ऊंची जातियों के लिए 14% आरक्षण का कानून भी बना दिया गया, मगर ये उपाय कानूनी विवाद की भेंट चढ़ गए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अब ऐसे उपाय किए जा रहे हैं कि यह कानून की कसौटी पर खरा उतरे। गुर्जर बिरादरी ने यह हासिल करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई है। आरक्षण के लिए आंदोलन किया, सपने देखे और समझौते भी किए, मगर कोई भी समझौता उनके ख्वाबों की इमारत तामीर नहीं कर सका। शायद यह समझौता उन्हें उस मंजिल तक ले जाए जिसकी उन्हें सालों से मुराद है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली निधि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपीलैड्स के इस्तेमाल में कई प्रमुख सांसद काफी पीछे हैं। इनमें खासतौर पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर राजनीतिज्ञ उन 200 सांसदों में से एक हैं जिन्होंने इस मद में मिलने वाले फंड से कुछ भी खर्च नहीं किया है। हालांकि सांसदों का कहना है कि एमपीलैड्स के क्रियान्वयन के लिए उन्हें पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की ये विशेष रिपोर्ट।
वर्ष 1993 से शुरू की गई यह निधि लोकसभा के सांसदों को अपने चुनावी क्षेत्र में कहीं भी, राज्यसभा के सांसदों को अपने राज्य में कहीं भी और मनोनीत किए गए सांसदों को देश भर में कहीं भी विकास करने के लिए आवंटित की जाती है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपीलैड्स के तहत मिलने वाली इस निधि का इस्तेमाल सामुदायिक भवन के निर्माण, बिजली आपूर्ति, सड़क और पीने के पानी के लिए किया जाता है। सांसदों का कहना है कि एमपीलैड्स का क्रियान्वयन पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन पर निर्भर करता है। इसके अलावा उनका कहना है कि इस योजना के मद में काम करवाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, जिसकी वजह से कभी कभी एक छोटे से काम में महीनों या साल भी लग जाते हैं। लोकसभा में झारखंड के धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पशुपति नाथ सिंह ने उदाहरण देते हुए बताया,
एक चापाकल 40-42 हजार रूपए का सरकारी दर से लगेगा, तो उसके लिए ग्राम सभा होगा, अकाउंट खोलेगा, अकाउंट खोलने के बाद जो है उसका जो ग्राम सभा का ऑडिट होगा वो अभी 42 हजार का काम में पीने के पानी के 2 लाख से ऊपर का काम होगा तो लाभ डिपार्टमेंटल करेगा। चापाकल मांगता कौन है, जो खासकर हरिजन आदिवासी पिछड़ा हो, अब उसको ग्राम सभा करके उसका अकाउंट खोलवाइए, खर्चा कीजिए, ऑडिट कीजिए, तब पैसा उसके अकाउंट में जाएगा।
लंबी होती प्रक्रिया की चर्चा करते हुए राज्यसभा में बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद गुलाम रसूल बलियावी कहते हैं कि एमपीलैड्स के क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारी को मनोनीत किया जाता है और इस मद में जो भी काम होना है वो उन्हीं के माध्यम से ही होना है।
इसके लिए हर एमपी का अपना नोडल डिस्ट्रिक्ट है, जो वहाँ के जिला पदाधिकारी इसके जिम्मेदार होते हैं उनको लिखा जाता है, वो कल्याण पदाधिकारी प्रोग्रामिंग ऑफिसर को इंड्यूस कर देते हैं, फिर कोटेशन मंगवाते हैं, वो फिर वो टेंडर की प्रक्रिया में डालते हैं, अब उसके बाद फिर काम शुरू होता है। तो जो काम एक हफ्ते में होना चाहिए वो काम शुरू होते होते 6 महीना लग जाता है, यूटिलाइजेशन आते आते चुनाव का समय आ जाता है।
5 बार सांसद चुनकर आ रहे भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार पांडे कहते हैं कि ये कहना गलत होगा कि सांसदों ने मिलने वाला पैसा खर्च नहीं किया। उनका कहना है कि ये राशि केंद्र सरकार से सीधे राज्यों को जाती है।
एमपीलैड्स में सांसद को कोई अमाउंट नहीं मिलता है, एमपीलैड्स में रिकमेंडेशन का पावर है। अगर सड़क की योजना, हैंडपंप की योजना, अन्य जो योजनाएं भारत सरकार की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, अगर उनका रिकमेंडेशन का अगर पावर सांसद को दिया जाता है, 20 करोड़ का 30 करोड़ का काम तो होना है ना। कहां उसमें कोई कठिनाई की बात, लेकिन वो पावर सांसद को नहीं है, वो सिर्फ एमपी लेट्स में रिकमेंडेशन कर।
मगर पशुपतिनाथ सिंह कहते हैं कि एमपी लेट्स योजना के क्रियान्वयन के नियम राज्य सरकारें ही बनाती हैं, ना कि केंद्र सरकार।
जो नियम राज्य सरकार का है उसके अनुसार काम होगा, केंद्र सरकार के अनुसार नहीं है। केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन नहीं, यह काम कैसे होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक यूनिफॉर्म नीति, जो अगर केंद्र सरकार का ठीक है अपना विधायक फंड का अपना करे, अपना राज्य नियमावली बनाए, लेकिन इसको केंद्र सरकार को नियमावली बनाना।
इस मुद्दे पर चल रही बहस के बीच अब सांसदों की मांग पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है, जो एमपी लैड्स के तहत मिलने वाली राशि और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि न सिर्फ राशि में बढ़ोतरी बल्कि उसके क्रियान्वयन के लिए बने नियमों में बदलाव की भी अनुशंसा की जा सकती है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
बिहार में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि चुनाव में गठजोड़ को लेकर उनके सारे विकल्प खुले हैं। वहीं जनता परिवार के विलय में दिख रही अड़चनों के बीच राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के एक ट्वीट के बाद अटकलों का नया दौर शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
राजनीति में हमेशा मुस्कुराते रहने की कला कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस तमन्ना से लगाया जा सकता है जो उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जाहिर की। मांझी के मुताबिक मोदी ने उनसे कहा कि वो भी हमेशा मुस्कुराना चाहते हैं। दिलचस्प ये भी है कि सियासत में जो कभी मांझी के दोस्त थे वही अब दुश्मनों की कतार में है और मांझी चुनाव के पहले नए सियासी दोस्तों की तलाश कर रहे हैं। मांझी का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान धान घोटाले और किसानों की आत्महत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई, लेकिन बिहार चुनाव पर कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने बीबीसी को बताया,
प्रधानमंत्री ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से इन सब बातों की चर्चा करना हम उचित नहीं समझा। बात करनी होगी तो अभी लालू यादव भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कर रहे हैं, हम विचारोपरांत बात निर्णय लेंगे। हमारा एक ही रिजर्वेशन है पॉलिटिकल कि जिस गठबंधन में या जिस पार्टी में नीतीश कुमार जी रहेंगे उस पार्टी को छोड़ करके किसी भी पार्टी के साथ हमारा तालमेल हो सकता है। और पहले तो मैंने कहा था कि प्री इलेक्शन कोई किसी से बात नहीं होगी, लेकिन प्री इलेक्शन भी हम लोग कुछ बात करेंगे।
मांझी ने संकेत दे दिया है कि वो चुनाव पूर्व गठबंधन को तैयार है और किसी सूरत में नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं होंगे। जनता दल यूनाइटेड ने मांझी के इस रुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें विकास विरोधी बताया है। जेडीयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव कहते हैं,
क्योंकि नीतीश जी विकास करने वाला आदमी है, विकास विरोधियों के पक्ष में चले गए हैं, तो जो विकास करने वाला काम करने वाला है उसके खिलाफ बोलने का अर्थ ही होता है कि कहीं न कहीं विकास विरोधी मानसिकता है।
जनता दल यूनाइटेड के लिए दिक्कतें सिर्फ मांझी नहीं, पार्टी के सामने मुश्किलें और भी हैं। जनता परिवार का विलय अटका हुआ है, सहयोगियों की सलाह और नसीहतें भी पार्टी पर दबाव बना रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के एक ट्वीट के बाद अटकलों का नया दौर शुरू हो गया है। लालू ने ट्विटर पर लिखा कि गठबंधन होना तय है, लेकिन हर किसी को बड़े त्याग के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा कहते हैं कि त्याग का मतलब मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी नहीं है।
43 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से हर एक विधानसभा क्षेत्र में 2 से 4 उम्मीदवार हैं, और क्योंकि अलग अलग दल साथ इकट्ठा हो रहे हैं, अगर इसमें त्याग की भावना ना हो तो क्या ये विलय या गठबंधन कभी भी सहज हो पाएगा। नीतीश जी को लगातार हमने 2 बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में समर्थन किया है। देखिए, ये स्पष्ट है कि जब गठबंधन होगा तो ये गठबंधन जो है बिना गांठ के होगा।
सियासत में न तो गांठ खोलना आसान है और न ही मुस्कुराना, और इसे संकेतों के सहारे अपनी सियासत आगे बढ़ाते बिहार के नेताओं से बेहतर कौन जानता है। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
भरोसा वही, बस जमाना बदला। राजनीति वही, बस शासक बदला। बीबीसी हिंदी वही, बस प्रोग्राम बदला। बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम अब नए रंग और नए कलेवर में। एक जून से नमस्कार भारत का दूसरा अंक हो जाएगा विश्व भारती और दिन भर का दूसरा अंक कहलाएगा घटना चक्र। सुनिए सुबह 6:30 से 7 तक नमस्कार भारत और 8 से 8:30 विश्व भारती, शाम 7:30 से 8 दिन भर और 9:30 से 10 तक घटना चक्र।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत सुशीला सिंह के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही ग्रामीण भारत को डिजिटल भारत में बदलने का सपना दिखाया। भारत की आधी आबादी से ज्यादा गांव में रहती है और ग्रामीण और शहरी भारत के बीच का डिजिटल फासला बहुत बड़ा है। हालांकि अब गांव में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका श्रेय कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को ही जाता है जो ग्रामीण भारत को कंप्यूटर व इंटरनेट शिक्षा प्रदान कर रही हैं। इंटरनेट की सुविधा को हर भारतीय का मूल अधिकार बनाने का सरकारी वायदा आखिर कहां पहुंच पाया है? ग्रामीण भारत से सुनिए बीबीसी संवाददाता शालू यादव की ये रिपोर्ट। दिल्ली से राजस्थान की ओर बढ़ते हुए सीमा पर पहले तो ऊंची ऊंची कॉरपोरेट इमारतें दिखाई देती हैं और फिर उसके कुछ ही किलोमीटर बाद खेतों के बीच खड़े कच्चे मकान। गांव की इस मूक सी तस्वीर को देखकर ये नहीं लगता कि यहां इंटरनेट के बारे में किसी को जानकारी भी होगी, लेकिन मेरी यह धारणा गलत साबित हुई। राजस्थान के अलवर जिले के चंदोली गांव में दूर दूर तक बंजर जमीन है जिसके बीच में कुछ एक कच्चे पक्के मकान हैं। दूर सूखी अरावली की पहाड़ी दिखाई दे रही है यहां से, और इन मकानों के बीच एक पक्की इमारत है जो कि कंप्यूटर सेंटर है, इस गांव का पहला कंप्यूटर सेंटर जहां पर बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर और इंटरनेट की शिक्षा दी जाती है। और जैसे जैसे मैं इस सेंटर की ओर बढ़ रही हूं, मुझे यहां से बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें आ रही हैं, मानो कि वो बहुत ही खुश हों। इस क्लास में गांव के बच्चे हर शाम कंप्यूटर सीखने आते हैं और इनका आत्मविश्वास दंग कर देने वाला है।
आज मैं इंटरनेट के बारे में फेसबुक, जीमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड समाचार पत्र पढ़ना, एडमिट कार्ड निकालना एवं बोर्ड क्लास के रिजल्ट देखना। फेसबुक पर हम आपस में दोस्तों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और फोटो शेयर कर सकते हैं। हमारे पास भी वो सब है जो शहर के बच्चों के पास होता है, इंटरनेट, कंप्यूटर, घर का तो नहीं लेकिन सेंटर का तो हमारे पास सब कुछ है।
अलवर के चंदौली गांव में पिछले साल एक बेहद खास मेहमान आए थे, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग। मार्क के साथ हुई मुलाकात को याद करते हुए 13 वर्षीय हजरत सपवान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं,
उनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा कि हम इतने बड़े आदमी से, सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े आदमी से मिलेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि इंटरनेट पर क्या क्या चला लेते हो, हमने कहा कि फेसबुक, वो बोले ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा।
इंटरनेट प्रेम मानो यहाँ के बच्चों की रगों में दौड़ता हो। चंदौली भारत के उन गिने चुने गांवों में से है जहाँ इंटरनेट की शिक्षा लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। अब इंटरनेट सेवाओं के लिए इन्हें अलवर शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो रेलवे टिकट की बुकिंग हो या नौकरी की अर्जी। चंदौली गांव के लोग अब अपने गांव में ही रहकर इन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। यहां तक कि अब वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। इस गांव में कई लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया योजना के बारे में भी इंटरनेट पर ही पढ़ा था।
नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया वो चला रखा है जो, उसमें पूरे गांव को ही लिया है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे गांव में करानी चाहिए। जैसे हमारे गांव तो पहले ही कांग्रेस वाले राज में हो गया था, हम शहर के तो पहले ही जुड़े हुए हैं, ग्रामीण अब पिछड़े हुए हैं, इंटरनेट की वजह से ही पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है।
गाँव के लड़कों और पुरुषों से मिलकर तो बदलते ग्रामीण भारत का आभास होता ही है, लेकिन गाँव की लड़कियाँ इस तरक्की का हिस्सा नहीं दिखती। वर्षा शर्मा के घर में कंप्यूटर तो नहीं है, पर वो अपने पिता का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर देश दुनिया की खबर रखती हैं। वो कहती हैं कि इंटरनेट से गांव की लड़कियों का सशक्तिकरण तो हुआ है, लेकिन जहां तक सोशल नेटवर्किंग की बात है, उन्हें फेसबुक जैसी एप्स का इस्तेमाल छिपते छिपाते करना पड़ रहा है।
गाँव में ही होता है कि उस लड़की ने फेसबुक आईडी बना रखी है, तो मतलब ऐसे करते हैं, फेसबुक आईडी बना रखे, मतलब सब बातें बनाते हैं। तो मैंने खुद की फोटो डाली नहीं, ना मैंने अपना एड्रेस चांदौली का डाला, अलवर का डाला है, अलवर डिस्ट्रिक्ट बस। मतलब ऐसे मतलब गलत थिंकिंग रहती है हर लोग की, तो इसलिए नहीं बताती कि क्या फ़ायदा किसी को बताने से, कोई हमारे बारे में गलत सोचे। ये भारत है, ये कभी बदलेगा नहीं। मतलब जो गाँव के लोग हैं उनकी सोच नहीं बदलेगी अधिकतर देखा जाए तो, और वो भी गर्ल्स के मामले में तो नहीं बदल सकती।
चंदौली गांव में इन विभिन्न किरदारों से मिलकर लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वो उनसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा है। प्रधानमंत्री ने वायदा तो किया था कि केरल के इडुक्की जिले से शुरुआत कर अगले 3 सालों में वे पूरे भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ देंगे। लेकिन स्थिति का जायजा लेने जब मैं इडुक्की पहुंची तो पाया कि वहां सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी गई हैं, लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट का नामो निशान तक नहीं मिला। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नामक योजना की अगुवाई कर रही अधिकारी अरुणा सुंदरराजन ने सरकार का बचाव करते हुए बीबीसी से कहा,
See, one is a set of challenges in building out the infrastructure.
इस योजना के तहत इडुक्की में ऑप्टिकल फाइबर की तारें तो बिछा दी गई हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल पर अभी भी विचार होना बाकी है। हमें एक मॉडल तैयार करना है जिसमें हमें ये तय करना है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल पंचायत के स्तर पर किस तरह से किया जाए। पंचायत के स्तर पर अभी अधिकारियों को इसके इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है।
हालांकि उन्होंने माना कि ग्रामीण भारत को इंटरनेट से जोड़ने की योजना के रास्ते कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और अगले 3 सालों में इसे पूरा करने का वायदा महत्वाकांक्षी है। ऐसे हालात देखते हुए सवाल उठता है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी जो गांव में रहती है, क्या उनके और शहरी भारत के बीच का डिजिटल फासला कम हो पाएगा? शालू यादव, बीबीसी। तो आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी का डिजिटल भारत का सपना पूरा हो पाएगा? अपनी जो भी राय है ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही शालू यादव की विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब समय है वॉशिंगटन डायरी का, सुनते हैं ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी।
कुछ साल पहले की बात है, अमेरिका में आर्थिक मंदी अपने चरम पर थी और हर रिपोर्टर की तरह मैं भी विद्वानों के दरवाजे खटखटा रहा था, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब जैसे सवालों के साथ। उनमें से एक साहब ने कहा था कि अमेरिका को इंटरनेट क्रांति जैसी किसी क्रांति की जरूरत पड़ेगी इस मंदी से उबरने के लिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो क्रांति आ गई है। हरे हरे डॉलरों के एक के ऊपर एक चढ़े हुए बंडलों की तस्वीरें, टीवी चैनलों पर कभी कोई डॉक्यूमेंट्री तो अखबारों में किसी नए रिसर्च की दास्तान, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों ही के लिए इस चीज से जुड़े कम से कम 15-20 ऐप, और तो और एक खास दिन भी तय कर दिया गया है इस चीज को मनाने के लिए, यानी गांजा दिवस। गांजे का बिजनेस ऐसा चल रहा है कि मुझे कोई शक नहीं है कि अमेरिका में गांजा क्रांति आ चुकी है। इंटरनेट की तरह आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है गांजा। एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। आमतौर पर आपने देखा होगा अखबारों में एक मोहतरमा होती हैं जिनके पास दुनिया के सभी सवालों का जवाब होता है। दिल्ली से ट्रेन निकलते ही गंदे बदबूदार दीवारों पर जिन चीज़ों के शर्तिया इलाज की गारंटी का इश्तहार लगा होता है, उनके साथ साथ नौकरी, सास बहू के रिश्ते, प्यार में धोखा, बदतमीज़ बॉस जैसे हर सवाल का इनके पास जवाब होता है। तो ऐसे ही एक कॉलम में एक साहब ने अपनी परेशानी लिखी जो उन्हीं के शब्दों में बयान करता हूँ। मेरा बेटा कुछ ही महीनों में कॉलेज शुरू करने वाला है। जाहिर है वहाँ पार्टियाँ होंगी, शराब भी होगी, गांजा भी होगा। अगर मुझसे पूछता है तो क्या मैं कहूँ कि अगर पीना ही है तो शराब नहीं गांजा पिए? जवाब का निचोड़ तो यही था कि सभी रिसर्च यही कह रहे हैं कि गांजा शराब के मुकाबले कम नुकसानदेह है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब गांजा नीची नज़र से नहीं देखा जा रहा, उसे शराब के बराबर का दर्जा मिल चुका है और कुछ ही दिनों में शायद उससे ऊपर चला जाए। MBA और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स की तरह गांजा करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत भी हो चुकी है। इसमें बताया जाता है कि गांजे का बिजनेस कैसे करें, उसकी ब्रांडिंग कैसी हो, ग्राहक आपके पास बार बार लौटे इसके लिए क्या करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, वगैरह वगैरह। आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि मैंने भी कष्ट लगाया और हांके जा रहा हूँ? यकीन न हो तो बस cannabiscareerinstitute.com पर क्लिक करके देख लें। न्यूयॉर्क में तो बाकायदा एक गांजा वर्ल्ड कांग्रेस हो रहा है जिसका नारा है कैनबिस मीन्स बिजनेस, यानी गांजे का मतलब व्यापार। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो आपको याद होगा ऐसे कॉन्फ्रेंस अक्सर ही होते थे और आज तक जारी हैं। गांजे के लिए जिन ऐप्स की बात मैं कर रहा था उनमें घर की बालकनी में गांजा उगाने, उससे जुड़े कानून, चीलम के अलग अलग स्टाइल, सब की जानकारी है। गांजे से जुड़े पकवानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्या पता कुछ दिनों में ड्यूटी फ्री दुकानों में भी मिलने लगे। वॉशिंगटन DC में शौक के लिए गांजा बेचना गैर कानूनी है, मगर आप अपने इस्तेमाल के लिए 2-4 पौधे उगा सकते हैं। लेकिन गांजा प्रेमी अगर उतना इंतजार करेगा तो फिर भला प्रेमी कैसा? अब तो बस अपने फ़ोन पर एक टेक्स्ट कीजिए और गांजे का पैकेट आपके घर डिलीवर हो जाएगा। ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि इस क्रांति को यहाँ आने में इतना वक्त क्यों लगा। कहते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्होंने इस देश की नींव रखी, वो भी इसका शौक रखते थे, और राष्ट्रपति ओबामा अपने चूम गैंग का जिक्र अपनी किताब में भी कर चुके हैं। वैसे इन दिनों मेक इन इंडिया का बोलबाला है, यानी भारत में बनाओ विदेश में बेचो। अब इस नई गांजा क्रांति का फायदा कैसे उठाना है, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ब्रजेश उपाध्याय, BBC वॉशिंगटन।
तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह आपको भी ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का, और मेरे सामने अमल बैठे हैं। अमल मुस्कुरा भी रहे हैं। अमल, क्या कहते हैं आज अखबार?
सुशीला, आज जो अखबार हैं के जो पहला पन्ना है, उनकी मुख्य खबरें जो हैं एक दूसरे से लगभग काफ़ी अलग हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल नजीब जंग जो हैं, उनकी जो सियासी खींचतान है वो आज सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। मतलब जो LG की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और केजरीवाल ने अपनी याचिका हाई कोर्ट में दे रखी है तो उनकी सुनवाई वहाँ होगी। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगी, और अखबार उसमें खबरों के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान जो तीस्ता समझौता है उस पर भी वहाँ पर मुद्दा इस पर उठाया जाएगा और इस पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इस पर आ सकता है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि भारत फीफा के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उसके मौजूदा अध्यक्ष सेप ब्लैटर के लिए वोट कर सकता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर IIT मद्रास के छात्रों पर प्रतिबंध लगाने की भी एक खबर प्रकाशित की है। वहीं पिछले दिनों से गुर्जर नेताओं की जो आरक्षण की मांग जो चल रही थी उसको आखिरकार मान लिया गया है, और इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने, हिंदुस्तान हिंदी, NBT, नई दुनिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी ने प्रकाशित किया है कि इनको 5% जो आरक्षण की इनको मांग है वो उनको मान ली गई है।
जी, और हमने अपने कार्यक्रम में भी अपने श्रोताओं को सुनाया है, और अगर हमारे श्रोता इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो bbchindi.com पर भी आ सकते हैं।
जी सुशीला, बिल्कुल। और कल CBSE के जो रिजल्ट आए थे उसका आज बताया गया है कि किस तरह से परिणाम रहे, इसमें क्या क्या रहा।
तो और मुझे लगता है कि लड़कियां ही आगे रही
हैं। जी, हर बार की तरह लड़कियां ही आगे रही हैं इसमें। और लेकिन और एक ये भी है कि 94,474 छात्र ऐसे थे जिनके 10 CGPA जो लाइन, जो परफेक्ट स्कोर, अब जो ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले जो परसेंटेज जो है रिजल्ट का वो 1.55 यानी 1.55% की गिरावट आई है उसमें। और दूसरी तरफ तकरीबन हर अखबार ने मैसूर में जो राजा की ताजपोशी की जो खबरें हैं उसको लिया है। हालांकि ये जो ताजपोशी है सांकेतिक है, लेकिन 23 साल के जो यदुवीर कृष्णदत्त वाडेयर हैं उनके एक भव्य समारोह में ताजपोशी हुई, जो कि खासी चर्चा का विषय रहा, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक, ट्विटर हो, सब पे हर तरफ ये छाया रहा।
और BBC हिंदी पर भी इसका वीडियो देख सकते हैं।
जी, इसका वीडियो है, इनकी ताजपोशी की वीडियो।
पाठक आना चाहते हैं तो वो bbchindi.com पर भी इस ताजपोशी का वीडियो देख सकते हैं।
जी, वहीं अगर खेल के खबरों का रुख करें तो हर तरफ फीफा से जुड़े भ्रष्टाचार की खबरें ही छाई हुई हैं, जिसमें फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी तरह, चाहे जो हो, वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे, और जो भी अधिकारियों ने किया है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वहीं बैडमिंटन में साइना के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की खबरें भी हैं इसमें। और अगर देश विदेश का अगर रुख करें हम तो इसमें दैनिक जागरण ने लिखा है कि पैसे के दम पर मुसलमानों को लुभा रहा है चरमपंथी संगठन IS, और कैसे किस तरह से वो आकर्षित होते हैं इसकी तरफ। और आईफा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार सुभाष घई को दिया गया है। जी सुशीला, यही है यहाँ का खबरों का प्रेस रिव्यू। इतना
जी समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम के का अंत करने से पहले मुख्य समाचार अमल चौधरी से।
BBC समाचार। राजस्थान सरकार गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए तैयार हो गई है। 8 दिन के गतिरोध के बाद गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच सहमति बन गई है। इराक की राजधानी बगदाद में 2 बम धमाकों में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है। कार में हुए यह बम धमाके सबसे पहले शहर के जाने माने होटल बेबीलोन में हुए, और उसके कुछ देर बाद शेरेटन होटल में दूसरा धमाका हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। यूरोपीय फुटबॉल संस्था यूएफए के प्रमुख माइकल प्लैटिनी ने इस मुद्दे पर बुलाई गई आपातकालीन बैठक के बाद ब्लैटर से इस्तीफे की मांग की थी। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सीरिया में ऐतिहासिक शहर पलमायरा में एक पुराने थिएटर में 20 लोगों की हत्या कर दी। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आपसे 8 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत।